ओम नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत अध्याय का शीर्षक है कृपया पुस्तकों का वितरण कीजिए। 1972 में श्रील प्रभुपाद जी पुस्तक वितरण के लिए भक्तों को निवेदन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की एक किताब भी आया है, माय हम्बल रिक्वेस्ट। प्रभुपाद जी के बहुत सारे वाक्यों को संग्रह किया गया है, कलेक्शन करके एक किताब के रूप में दिया गया है। यही उसका लाइन यही है ना, माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, ऐसे ही है ना शीर्षक। हिंदी में है हमारा नम्र निवेदन, कृपया पुस्तक वितरण कीजिए, यही है ना शीर्षक उस किताब का। हिंदी शीर्षक यही है। आए मेरा अनुरोध है कृपया पुस्तक वितरण कीजिए। जोर से बोलिए, मेरा निवेदन है या अनुरोध है या दोनों है, एक बताइए। मेरा अनुरोध है कृपया पुस्तक वितरण कीजिए, प्रभुपाद जी का वाक्य है। अंग्रेजी में भी आया है वो किताब, एक समय 2 साल पहले दिया गया था, जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूटर है उनको दिया गया था। माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। प्रभुपाद जी नम्र निवेदन कर रहे हैं कि कृपया हमारी पुस्तक वितरण कीजिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बहुत नम्रता से प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो 1972 में श्री प्रभुपाद ने जगदीश स्वामी को पत्र लिखा, मेरी पुस्तकों के वितरण की नई विधियों के बारे में तुम्हें हमेशा सोचते रहना चाहिए, और भक्तों ने नई विधियां ढूंढ निकाली, क्रय विक्रय के केंद्र, जनसंकुल मार्ग, वाहन खड़े करने के स्थान, कहां कहां पुस्तक वितरण कर सकते हैं। अब जैसे अभी सिग्नल में करते हैं लोग, स्कूल में करते हैं, या जहां ज्यादा ट्रैफिक होता है सिग्नल पर वहां करते हैं, तो मार्केट में करते हैं, और जहां कुछ प्रोग्राम चल रहा है कथा वहां पर करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त लोग भी पुस्तक वितरण करें, नई नई युक्ति निकालते रहते हैं, नया नया जो है कुछ आविष्कार होता है कि कैसे अधिक से अधिक पुस्तक वितरण हो। तभी इस समय स्कूल के माध्यम से ज्यादा पुस्तक वितरण हो रहा है। स्कूल में कुछ कंपटीशन रखते हैं, है ना, कुछ कंपटीशन रखते हैं ना, पुस्तक दे दिए जाते हैं और 3 महीने के बाद जो है वो कंपटीशन होता है, उसमें प्राइज भी होता है। तो ये भी पुस्तक वितरण करने के लिए अच्छा नुस्खा है। तो उस समय भी भक्त लोग पुस्तक वितरण करने के लिए अनेक विधि बनाए थे, जिसमें है भक्तों ने नई विधि क्या निकाली थी, क्रय विक्रय के केंद्र मान मार्केट एरिया में जनसंकुल मार्ग। जनसंकुल मार्ग क्या है? जनसंकुल मार्ग मतलब रेलवे स्टेशन होता होगा, जनसंकुल है ना, रेलवे स्टेशन ही होगा। क्या होता है, क्या बोले, स्कूल पाथ, फुटपाथ, हाँ फुटपाथ, जनसंकुल मार्ग फुटपाथ। अच्छा अच्छा आप समझ रहे हैं, आप हिंदी भाषी नहीं है फिर भी समझ गए, मैं नहीं समझ रहा था। चेला चीनी रह, लोग कहावत कहते हैं कि गुरु गुड़ रहे रह गए और चेला चीनी हो गए। गुड़ जो गुरु जो है गुड़ ही रह गए और चेला आगे निकल गया। तो संदीपनी प्रभु जो है देखिए अच्छा इसको समझ। तो जनसंकुल मार्ग और वाहन खड़े करने के स्थान जहां पर पार्किंग एरिया में, विदेशों में ज्यादातर पार्किंग एरिया में भक्त लोग करते हैं। तो एयरपोर्ट के बाजू में बहुत बड़ा पार्किंग है, यहाँ भी पार्किंग एरिया में। अब वे पहले से अधिक लोगों से मिल रहे थे। जनसंकुल मार्गों और क्रय विक्रय केंद्रों में प्रवेश करने से भक्तों की पहुंच अमेरिकी समाज के हृदय स्थल तक हो गई। जनसंकुल मार्गों और क्रय विक्रय केंद्रों में प्रवेश करने से भक्तों की पहुंच अमेरिकी समाज के हृदय स्थल तक हो गई। मैं ये इन जगहों पर अधिक से अधिक विदेशी जो अमेरिकन थे उनसे संपर्क भक्तों का होने लगा, उनके हृदय स्थल तक हो गई। ने बोलते हैं ना ये मुंबई का हार्ट प्लेस है, हार्ट एरिया। जैसे मुंबई का सबसे भीड़ भाड़, सबसे ज्यादा लोग कहाँ मिलते हैं, जैसे कलबा देवी में जाइए, भीटी है, चर्च गेट है, कलबा देवी है, नरीमन प्वाइंट है और मस्जिद बंदर है, उधर बहुत भीड़ होता है। तो ऐसे अमेरिका के हार्ट सिटी, अमेरिका का जो हार्ट है, हृदय है, हृदय स्थली पर भक्त लोग पहुंच गए, आसानी से वहां के निवासियों से संपर्क करने लगे। जनसंकुल मार्गों और क्रय विक्रय केंद्रों में प्रवेश करने से भक्तों की पहुंच अमेरिकी समाज के हृदय स्थल तक हो गई। अब उनकी भेंट धर्मिष्ठ हों, पापिष्ठ हों, धनी निर्धन काले श्वेत सभी तरह के लोगों से होने लगी। पुस्तकों की बिक्री अब भी कठिन बनी रही, किंतु भक्त धर्ज का परिचय देते रहे, वे पुस्तकों के भारी गठर ढोते रहे और साहित्य का वितरण करते रहे जिनकी समझ में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला था। पुस्तकों का जो क्रय विक्रय था बड़ा कठिन था उस समय, फिर भी भक्त लोग अपना धर्ज जो है नहीं खोए और बंडल का बंडल पुस्तक लेकर के चलते थे, बैग में चाहे हाथ में। और ऐसे लोगों से मिल रहे थे जो कुछ धार्मिक थे, कुछ ऐसे भी थे जो पापिस्ट माने सब कुछ खाते थे। अब उनकी भेंट धर्मिष्ठ हों, पापिष्ठ हों, धनी निर्धन काले श्वेत सभी तरह के लोगों से होने लगी। भक्त खरीदारों को भौतिक शक्ति के चलते फिरते शिकारों के रूप में देखते, लोगों को केवल इंद्रिय और मानसिक सुख से निमित्त जीते देखते थे, जिनकी दारुण मृत्यु अवश्यंभावी थी। कोई भी गंभीर भक्त गीता के आधार पर दार्शनिक दृष्टि से भौतिकतावादियों की दुर्गति का वर्णन कर सकता था, किंतु अब तो वे प्रत्यक्ष रूप से उनकी यह दुर्गति देख रहे थे और प्रभुपाद की कृपा से वे दिग्भ्रमित आत्माओं को उनके दिव्य ज्ञान की आवश्यकता के अभाव से उबारने के लिए घोर प्रयत्न कर रहे थे। भक्त खरीदारों को भौतिक शक्ति के चलते फिरते शिकारों के रूप में देखते, लोगों को केवल इंद्रिय और मानसिक सुख के निमित्त जीते देखते थे, जिनकी दारुण मृत्यु अवश्यंभावी थी। कोई भी गंभीर भक्त गीता के आधार पर दार्शनिक दृष्टि से भौतिकतावादियों की दुर्गति का वर्णन कर सकता था, किंतु अब तो वे प्रत्यक्ष रूप से उनकी यह दुर्गति देख रहे थे। जो भक्त लोग थे, जो पुस्तक जो खरीद रहे थे अथवा आ जा रहे थे, उनको देख रहे थे। कुछ लोग इतने भौतिकतावादी जीवन में लिप्त थे कि उनकी मृत्यु अवश्यंभावी थी। कुछ लोग ऐसे खाने पीने के व्यसनों में से मांस सेवन करना, मदिरा सेवन करना या अनेक प्रकार के जो नशा के अनेक वहां पदार्थ मिलते थे। जैसे मुंबई में भी हम लोग देखे हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे ऐसे बोतल में कुछ नशीले पदार्थ लिए रहते हैं, ऐसे सूंघते रहते हैं। क्या रहता है वो, ऐसे सूंघते रहते हैं, उसे नशा होता है। केनिया में हम पहली बार देखे थे, जब केनिया में गए थे तो जहां भी सिग्नल में कारें रुकती थी तो लड़के लगभग 18-20 वर्ष के लड़के तो हाथ में छोटा बोतल लिए रहते थे, यानी तो कपड़ा रहता था उसमें कुछ नशीला पदार्थ होता था, तो वे लोग उसको ऐसे सूंघते रहते थे। अब क्या है वो भी कोई पदार्थ, नशीला पदार्थ है। तो मैं पहली बार देखा वहां, अब मुंबई में भी दिखाई देते हैं ऐसे हाथ में लिए रहते, नशा होता है उसमें, इसे सूंघ करके नशा प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं पूछा, एक गुहे दास थे, तो कहे कि ये लोग नशा करते हैं और चोरी करते हैं और सिग्नल पर आते हैं, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो पत्थर भी मारते हैं। के नियम हम देखे थे 2002 में, और नहीं देने पर गाड़ी के ऊपर थूकते भी थे वो लोग, हम प्रत्यक्ष देखे थे। तो अमेरिका में भी नशा के अनेक नशीले पदार्थ थे, वो खा करके लोग मर रहे थे, जिनकी मृत्यु अवश्यंभावी थी। शराब पीने वाला आदमी भी कुछ समय के बाद बीमार हो जाता है, शराब पीने वाला व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। शराब लोग सोचते हैं कि हम पी रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि शराब ही आदमी को पी जाता है। पीने वाला आदमी सोचता है कि हाँ कि बहुत सुंदर है, बहुत आनंद है, लेकिन वही व्यक्ति के धन को और स्वास्थ्य को पी जाता है। आजकल तो स्कूलों में लिखा भी रहता है, स्लोगन बनाकर लिखते हैं लोग कि बाप पिए दारू और बेटा लगाए झाड़ू। अगर बाप दारू पीता है तो उसका मतलब परिवार फुटपाथ पर आ जाता है, क्या करेगा, बेटा झाड़ू पोता लगाता है या पत्नी जो है किसी घर में झाड़ू पोता लगाती है। शराब पीने वाला व्यक्ति अपना पूरा सम्मान, अपना धन सब कुछ पी जाता है, वो अपने जीवन में कोई शर्म नहीं होता, वो शर्म को भी पी जाता है। शराब एक बहुत बहुत बड़ी बुराई है। शराब, जो शराब का शिकार हो जाता है तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो अमेरिका में भी उस समय काफी जोरों पर शराब का प्रचलन था, लोग शराब पीते थे, नशा करते थे और मर जाते थे, असमय असामयिक मृत्यु हो जाती थी। शराब का अर्थ होता है जो वस्तु सड़ा कर बनता है उसको शराब बोलते हैं। जैसे भात को, फल को सड़ा दिया जाता है तो शराब हो जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हम फल के रस को पी रहे हैं, लेकिन फल का ताजा रस पीना और उसको सड़ा करके पीना अंतर है। सड़ा, जो सड़ जाता है वो शराब होता है। सड़ा आब, आब माने पानी, और सड़ा माने सड़ा हुआ पानी। अपभ्रंश में सड़ा आब होता है, शराब, सड़ा आब, जो सड़ा सड़ा कर बनाया जाता है। कभी कभी इतना वस्तु सड़ जाता है कि उसमें कीड़े भी आ जाते हैं और बहुत दुर्गंध आने लगता है। इस तरह से ऐसे शराब बनता है, और शराब पीने पर आदमी की बुद्धि भी, उसकी मानसिकता विकृत हो जाती है। वो बिल्कुल कुछ और सोचने लगता है शराब के नशे में। जिनकी दारुण मृत्यु अवश्यंभावी थी, ऐसे प्रकार के लोग अनेक प्रकार के नशा से अपने जीवन को मृत्यु की ओर अग्रसर कर रहे थे। कोई भी गंभीर भक्त गीता के आधार पर दार्शनिक दृष्टि से भौतिकतावादियों की दुर्गति का वर्णन कर सकता था। संसार में जो भी नशा के शिकार हो जाते हैं या किसी भी व्यसन के, अनेक व्यसन हैं, बुरी आदतें हैं, जब व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार हो जाता है तो उससे उसको छुटकारा पाना बड़ा कठिन हो जाता है। अति कुछ लोग तंबाकू के भी इतने शौकीन हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं कि नहीं छोड़ पाते हैं। बहुत लोगों को तंबाकू खाने की आदत जब हो जाती है तो छोड़ देते हैं। कभी कभी तंबाकू के जो ट्यूब है या चूना रखने का जो ट्यूब है उसको फेंकते हैं, फिर थूक कर चाटते हैं कि अब हम नहीं खाएंगे, कान पकड़ते हैं। बहुत भक्त भी, एक हमारे साथ हमारे गांव के एक व्यक्ति मथुरा आए थे, तो हम लोग परिक्रमा में तो पीछे हो जाते थे, दो लोग पीछे हो जाते थे, तो मैं कहा क्यों पीछे आप लोग हो रहे हैं, तो बता नहीं रहे थे वो लोग, बोले नहीं हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, कथा करके चल रहे हैं। तो तीसरा भक्त कि ये लोग तंबाकू खा रहे हैं, ये लोग तंबाकू बनाकर खा रहे हैं, इसलिए पीछे हो जाते थे। तो बाद में हम लोग कहे कि आप उनका सर्च किए हम लोग, तो उनके पॉकेट से तंबाकू चूना निकाल करके लोगे की फेंक दीजिए, फिर उनको थूक करके उनके हाथ पर थुकवाए और फिर कहे चाटिए, हाथ पर थुकवा करके के चाटिए कि अब नहीं खाएंगे। वो थूक कर चाटे, संकल्प लिए कि अब मैं नहीं खाऊंगा। वृंदावन में संकल्प लिए कि अब नहीं खाऊंगा। लगभग 2-3-4 महीने तक पालन किए बड़े कठिनाई से, हो सकता है छुप कर खाते भी होंगे। 4 महीने के बाद फिर वो अपने पूर्वा स्थिति पर हो गए, खाने लगे, फिर सब कुछ खाने लगे वो। तो आदत जो है जल्दी आदत नहीं जाती है, कोई भी चीज खाने की आदत हो जाती है तो, चाहे पान खाने की आदत हो, तंबाकू खाने की आदत हो, शराब पीने की आदत हो, तो जल्दी नहीं जाती है। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी लोग नहीं छोड़ पाते हैं। अब प्रभुपाद जी विशेष करके विदेशों में गए तो यही इसी पर जोड़ दिए कि नशा नहीं, मांसाहार नहीं, अवैध संग नहीं और जुआ ताश नहीं। मांसाहार निषेध है और नशा निषेध है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, ऐसे चार चीज मुक्त समाज प्रभुपाद जी बनाना चाहते थे। ये सबसे बड़ा व्यसन है, शराब पीना, मांसाहार करना, अवैध संबंध रखना और जुआ ताश चौपड़ी खेलना। ये चार जो बुराई है, इससे समाज अगर मुक्त हो जाए तो स्वर्ग जो है वो स्वर्ग हो जाता है। जैसे परीक्षित महाराज के समय में, युधिष्ठिर महाराज के समय में ये सब चीज नहीं होता था, कोई नशा नहीं करता था, कोई मांसाहार नहीं करता था, कहीं भी कत्ल खाना नहीं था, शराब खाना नहीं था। लेकिन वर्तमान में हर गली गली में जो है कसाई खाना है, तो हर घर घर में कत्ल खाना है, लोग घर में ही ला करके मुर्गी काटते हैं या पशु वध करते हैं। जो लोग पशुओं का कत्ल करते हैं तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई अपने घर में मान लीजिए मुर्गी काटता है तो श्मशान है, मुर्दे को लोग श्मशान में जलाते हैं, तो जलाने के बाद लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, या श्मशान में जाने के बाद लोग सब वस्त्र स्नान करते हैं, वस्त्र सहित स्नान करते हैं। आज जो घर को ही श्मशान भूमि बना दिए हैं, घर में ही मुर्गी मुर्गा अंडा मछली काट कर पका रहे हैं तो श्मशान है। जो भी प्राणी मर गए वो मुर्दा हो गया, और मुर्दे को पकाकर पहले चूल्हे में पकाते हैं फिर पेट में पकाते हैं, तो शरीर भी श्मशान की तरह हो गया। ये पेट जो है श्मशान में मुर्दा जलाने का जगह जैसा हो गया। तो घर को और स्वयं को श्मशान भूमि बना लेने से आदमी क्या करता है, फिर श्मशान में कौन रहता है? श्मशान में कभी कभी आत्माएं रहती हैं भूत प्रेत के रूप में, जो जिसको जलाया जाता है तो श्मशान में अधिकतर वो आत्माएं रहती हैं, भटकती हैं। जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, कोई जहर खाकर मर गया है, कोई आग लगाकर मर गया है, तो आत्माएं भटकती हैं। तो जिसके घर में ही श्मशान है, घर में ही जला रहा है, पका रहा है, खा रहा है, तो श्मशान हो गया। तो श्मशान में भूत प्रेत बेताल रहे, कलह अशांति, ये ज्यादातर तो लोग मांस खाने वाले, शराब पीने वाले कलह करते हैं, घर में हमेशा मारपीट, लड़ाई झगड़ा, अशांति रहती है। ते घर मरघट सार रखे, जिस घर में भी मद्यपान और मांसाहार होता है वो घर कैसा है? ते घर मरघट सार रखे आ भूत बसे तीन माह, वहां भूत का डेरा होता है, भूत निवास करता है। इसलिए ये चार कार्य जो है प्रभुपाद जी है कि नहीं करना चाहिए मनुष्य को, मानव समाज के लिए चार जो है महान पाप है, इसको रोकने के लिए प्रभुपाद जी पुस्तक वितरण का कार्य चलाए कि पुस्तक वितरण से समाज का सबसे बड़ा कल्याण होगा। और पुस्तकों में प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं कि चार पाप है, मांसाहार करना, शराब पीना, नशा करना, हर प्राय हर एक दो पेज में जिक्र है कि चार पाप है, नहीं करना चाहिए, मनुष्य के लिए चार का वर्जित है। और कोई असुर है, राक्षस है, जो भी चार कार्य करते हैं, मांसाहार सेवन करते हैं, नशा करते हैं, तो मनुष्य नहीं है, वो असुर है। तो पुस्तक वितरण के माध्यम से लोगों में हम अच्छा संस्कार पैदा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पुस्तक वितरण होगा, जिससे पढ़ करके लोग इस बुराइयों से छुटकारा पाएंगे। बहुत सारे लोग पुस्तक पढ़ करके वेजिटेरियन हो रहे हैं। विदेशों में भी प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से लोग मांसाहार छोड़ रहे हैं और शाकाहारी बन रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे प्रभुपाद जी के कोई भी किताब में यह जरूर मिलेगा कि ये चीज नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। गीता प्रेस ने किताब निकाला है, क्या करना क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको प्रभुपाद जी बहुत पहले ही अपने किताबों में लिखे हैं, गीता प्रेस वाले अब निकाल रहे हैं, नहीं प्रभुपाद जी बहुत पहले हर किताबों में पढ़ाएंगे क्या करना है, मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आदमी को अपने स्व विवेक से जानना चाहिए कि हमें क्या खाना है, कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, कितना खाना है उससे अधिक नहीं खाना है। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु, और दूसरा लाइन कैसे है, युक्त स्वप्न व बोधस्य, ऐसी कुछ है। तो क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए और कहाँ पर खाना चाहिए कहाँ नहीं खाना चाहिए, किसके द्वारा खाना चाहिए किसके द्वारा नहीं खाना चाहिए। जैसे फुटपाथ पर भी खाना मिलता है, बाहर के रेस्टोरेंट में भी खाना मिलता है, रेलवे स्टेशन पर भी मिलता है। एक बार हम वृंदावन में से आ रहे थे हम लोग, तो मेरे साथ एक और भक्त थे अधोक्षा जी, वो बिहार के महाराज के गांव के थे। तो महाराज कहे कि हम लोग जल्दी निकल रहे थे, तो महाराज कहे कि मथुरा स्टेशन में बहुत सुंदर पूरी सब्जी मिलता है, आप लोग वहां खरीद ले लीजिएगा। तो मथुरा स्टेशन में देखे तो जो बनाने वाले थे उनका पसीना पूरा उसी में गिरता था, अब पसीना ऐसे पोछ करके फिर पानी डालते थे या करते थे, ना कैसे करके भी ऐसे पोछ लेते हैं वो लोग। या गर्मी हो तो ज्यादा ये होता है, गर्मी है और बना रहे हैं स्टोव पर, ज्यादातर लोग बनाते थे, पर अब तो गैस सिस्टम हो गया, तो बनाते समय वो यह नहीं देखते हैं कि हमारे भाई आने वाले हैं, हमारे मेहमान आने वाले हैं, वो इतना साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, पानी गंदा भी है तो भी वो यूज कर लेते हैं, बेसन में मान लीजिए कीड़े भी हैं तो भी मिलाकर बना देते हैं। तो बनाने वालों को देखें, हम तो मैं कहती नहीं हम लोग नहीं लेंगे, चलिए फल ले लेंगे। तो खाने से पहले देखना चाहिए कि कैसे बन रहा है। ज्यादातर रेस्टोरेंट के अंदर आप जाएंगे तो जो डाइनिंग टेबल में बहुत सफाई होता है, डाइनिंग टेबल बोलते हैं ना, खाने का जगह, डाइनिंग टेबल ना। बोलो ना, आप आईआईटी के कैंडिडेट हो, आईआईटी के कैंडिडेट हो ना आप, हैं? क्या चीज, आप आईआईटी के स्टूडेंट हो? हाँ तो बोलो नहीं, आप बिहार पटना के हो तो थोड़ा बोलो जोर से। तो डाइनिंग टेबल में बहुत सफाई होता है, लेकिन किचन में आप लोग गए हैं कभी? किचन में पहले जाना चाहिए कि कैसे बन रहा है, साफ सफाई है कि नहीं। वो जगह तो बहुत अच्छा, लेकिन किचन पहले देखना चाहिए कि वहाँ कैसे बन रहा है। एक जगह चेंबूर में हम लोग प्रोग्राम गए थे, तमाल जी भी थे, निताई प्रभु थे, राधा कृष्ण प्रभु भी थे। तो जहाँ तो ये लोग जल्दी जल्दी चल गए तो मैं पीछे जा रहा था, तो जहाँ बन रहा था वहाँ मैं देखा, तो जो बना रहा था वो खा भी रहा था और बना भी रहा था। तो मैं कहा कि इन लोगों को आप पहले बताए नहीं थे, वही खा रहा है वही बना रहा है, ऐसे बनाते हैं। ये रति रमन भी थे शायद। और एक और प्रोग्राम हम लोग गए थे मलाड़ में, राधा कृष्ण प्रभु का डोनर है वो, कलश डोनर। तो हम लोग बैठे थे तो बातचीत हो रही थी, तो कहा कि मैं कहा कि आपके कितने लड़के हैं? तो एक लड़का था वो मर गया था, तो कहा कि अभी हमारा लड़का आने वाला है। तो एक बड़ा कुत्ता आया, तो कहा कि यही हमारा लड़का है, कुत्ते को यही हमारा लड़का है। बाद में खाने के लिए हम लोग बैठे, जब खाने के लिए आया तो टेबल में तो मुझे थोड़ा गंध आ रहा था लहसुन का, तो मैं कहा, संजय भी थे, संजय प्रभु थे, तमाल जी थे, राधा कृष्ण थे, पता है रति रमन ये भी थे शायद। तो मैं कहा कि गंध आ रहा है थोड़ा, रुकिए आप लोग। तो हम पूछे कि इसमें लहसुन जैसा गंध आ रहा है? तो बोला नहीं 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 पड़ा है। तो मैं कहा कि नहीं, गंध तो आ रहा है। सब लोग खाने लगे, मैं थोड़ा वेट कर रहा था। तो तक संजय के अथु में एक लहसुन का एक आ गया आखा ऐसे गट्टा। तो मैं कहा कि मुझे अनुमान लग रहा था, आप लोगों को थोड़ा इंक्वायरी करना चाहिए था। सब लोग खाने लगे। बाद में उसको हम कहे कि आप तो सब डलवा दिए हैं, क्यों डलवाए, आपको बताया नहीं गया था? राधा कृष्ण प्रभु कहे कि नहीं हम बताए थे। तो कहा कि नहीं, मैं अपने कुक को बोलना भूल गया था। कहा कि अपने कुक को बताना मैं भूल गया था। तो मैं कहा कि बताना भूल गए थे तो कम से कम ये चीज न खा के हम लोग फल भी खा सकते थे। तो सोचा कि साधु लोग हैं, खा जाएंगे, कौन इतना ध्यान देता है। तो इस तरह से क्या खाना है क्या नहीं खाना है थोड़ा इंक्वायरी करना चाहिए, गबर गबर खाने नहीं लगना चाहिए। जहां भी जाते हैं वहां देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या बना है। तो इस तरह से हर जगह हमें नहीं खाना चाहिए, और खाने से पहले जानकारी होना चाहिए कि क्या कौन बनाया है कहाँ बनाया है। भक्त प्रत्यक्ष रूप से उनकी यह दुर्गति देख रहे थे, जो भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे अमेरिका में, कहाँ कहाँ कर रहे थे? तो जनसंकुल मार्गों पर, क्रय विक्रय केंद्रों में, पार्किंग में, मार्केट प्लेस में, तो हर तरह के लोग वहाँ आते थे। कुछ लोग शराब के नशे में आते हैं, कभी कभी बुक टेबल में शराबी लोग भी आ जाते हैं, या चोरी करने के उद्देश्य से भी लोग आ जाते हैं, या कभी कभी लोग तर्क वितर्क करने के लिए लोग आ जाते हैं। या भीटी में एक बार हम थे तो एक आदमी कहा कि आप गीता को भी व्यवसाय बना लिए, रोड पर ला दिए, मतलब गीता को ही बिजनेस बना दिए, सब बोलने लगा। गीता को भी रोड पर ला दी। तो मैं कहा कि क्या हो गया गीता, अगर ज्यादा प्रचार हो तो अच्छा है ना, न्यूज पेपर का इतना प्रचार होता है गली गली में घर घर में, तो अच्छा चीज का ज्यादा प्रचार होना चाहिए। मैं कहा कि टूथपेस्ट का कितना प्रचार होता है, साबुन का कितना प्रचार होता है, तो अच्छा चीज है तो इसका ज्यादा प्रचार होना चाहिए, ज्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, तभी लोग लेंगे समझेंगे। तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था बहुत तर्क वितर्क हो रहा था। तो ऐसे कभी कभी कोई शराबी आ जाते हैं तो बुक टेबल को ही उलट देते हैं, ऐसे भी ऐसा भी हो जाते हैं। कभी कभी चोरी करने के उद्देश्य से भी लोग आते हैं। बीटी में एक बार हम टेबल पर थे तो एक औरत आई और 1000 का नोट निकाली, तो हाथ में नोट निकाल करके और कही कि सब एक एक किताब दे दीजिए, जितना भी वेराइटी है एक एक सब में से दे दीजिए। तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि कम से कम 10-20 बुक तो चला जाएगा, कुछ छोट मीडियम बुक है कुछ बिग बुक है, तो हम लोग निकालने में लग गए सब वेराइटी एक एक करके। और उसने नोट को फिर बैग में रख ली और बाद में बुक निकाल कर हम लोग दिए तो कही कि नहीं मेरा पैसा वापस दीजिए, मुझे एक ही बुक चाहिए मेरा पैसा वापस दीजिए। तो मैं कहा पैसा आपने दिया कहाँ, पैसा तो आपने बैग में अपने रख लिया। अब नहीं, मैंने आपको 1000 का नोट दी और एक बुक केवल चाहिए और बाकी हमको 900 रुपया दीजिए वापस। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं आप अपना बैग चेक करो, आपके बैग में पैसा है। तो उसके बाद 3-4 लोग और थे, वो सब उसी ग्रुप के थे, तो वो कहे कि नहीं महाराज जी आपको पैसा दी इसने। तो मैं कहा कि पुलिस को बुलाऊं, हैं तुम पैसा दी है बुलाऊं पुलिस को हम लोग को पहले से मालूम था कि ऐसा होता है। तो बहुत बात विवाद हुआ, जब पुलिस को मैं कहा तब वो चली गई। तो ऐसे लोग भी आते हैं। तब नगर नगर घूमकर पुस्तकों के बेचने की विधि की खोज हुई। लॉस एंजलिस के कुछ ब्रह्मचारियों को लगा कि मंदिर में बैठे रहकर वे उस समय को नष्ट कर रहे थे, जिसका सदुपयोग पुस्तकों के वितरण में हो सकता था। अतः उन्होंने एक गाड़ी में कृष्ण पुस्तकें लाद ली और ऐसे वे क्षेत्रों में गए जहां वे एक सप्ताह रह सकते थे और सादा जीवन बिताते हुए पुस्तकों के वितरण में जितना चाहे समय लगा सकते थे। इस चलते फिरते संकीर्तन से पुस्तकों की बिक्री में एक और महत्वपूर्ण बाढ़ आ गई, क्योंकि इससे एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ जिसमें भक्त अपने कार्य में पूरे तन मन में लग सकते थे यह नया कार्यक्रम शीघ्रता से इस्कान की दुनिया में फैल गया और श्रील प्रभुपाद को यह पसंद आया। जैसे अभी संकीर्तन बसें जाती हैं 1-2 महीने के लिए पुस्तक वितरण करने के लिए, तो जो भक्त लोग पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं बसों में, तो अलग अलग जगहों में जाते हैं, अलग अलग सिटी में गांव में, और पुस्तकों का वितरण करने का अच्छा अनुभव होता है, अच्छा भी लगता है अलग अलग जगह दर्शन करने का, अलग अलग तीर्थस्थलियों का भ्रमण करने का भी अवसर प्राप्त होता है और नदी में स्नान करने का अवसर मिलता है, जंगल नेचुरल जंगल का दृश्य देखने को मिलता है, गांव का दृश्य, शुद्ध वातावरण, कुछ तपस्या करने का भी अवसर मिलता है, नदी में नहाना या हैंडपंप चलाकर नहाना, आदमी को एक अच्छा अनुभव होता है उसमें भी। जो शहर में रहे हैं वो ग्रामीण जीवन में कैसे रहा जाता है वो उसका भी अभ्यास होता है। जो केवल शहर में रहे हैं को गांव में जाने पर दिक्कत होता है, तो एक हमारे जीवन में एक अच्छा अध्याय चालू होता है कि हम गांव में भी रह सकते हैं और अच्छा एक परिवर्तन भी होता है और सबसे बड़ा लाभ होता है कि ग्रंथों का प्रचार होता है और भक्तों का आध्यात्मिक प्रगति भी होता है। जब आदमी तपस्या करता है तो उसका आध्यात्मिक प्रगति होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गांव गांव, शहर शहर और गांव गांव में प्रचार होना चाहिए, नहीं केवल शहर में ही, गांव में भी जाना चाहिए। नगरादि ग्राम, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जो भक्त रहते हैं वो गांव में नहीं जाना चाहते हैं, कभी कभी हमें गांव में भी जाना चाहिए प्रचार के लिए। अगर आप पूरा साल नहीं जा सकते हैं तो कम से कम साल में एक दो महीने जाना चाहिए, या ऐसे आप बस में नहीं जा सकते हैं तो खुद अपने गांव में जाकर पुस्तक लेकर जाइए, कथा कीर्तन के माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं। गांव के लोग आसानी से जुड़ते हैं, शहर के लोग पैसा देते हैं लेकिन गांव के लोग भक्ति में जल्दी आते हैं। तो शहर से हम धन संग्रह कर सकते हैं और गांव में अधिक से अधिक प्रचार कर सकते हैं। ज्यादातर गांव के ही भक्त बनते हैं, या यहां भी देखिए तो सब गांव के ही लोग भक्त बने हैं, अधिकांश लोग गांव के भक्त हैं, या स्थानीय लोग कम भक्त बनते हैं। जैसे मुंबई के कम लोग जुड़े हैं लेकिन बाहर के लोग ज्यादा जुड़े हैं, दूर के ढोल सुहावन लगे, भोजपुरी में लोग कहते हैं। नजदीक के लोग मंदिर नहीं आते हैं लेकिन दूर के लोग आते हैं, जो पड़ोसी हैं वो नहीं आते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग गंगा कलकत्ता में भी बहती है लेकिन हरिद्वार जाने का ज्यादा महत्व समझते हैं लोग। लोग हरिद्वार में जाकर बहुत प्रेम से नहाते हैं या प्रयागराज में, लेकिन कलकत्ता में भी गंगा है तो उसका महत्व कम होता है। घर के जोगी जोगड़ा, बाहर के जोगी सिद्ध, भोजपुरी में एक भी कहावत है। घर में कोई भक्त है तो उसको नहीं महत्व देंगे, अब बाहर का कोई आएगा तो बोलेंगे हाँ ये बहुत सिद्ध महात्मा है। जैसे हमारे गांव में एक फलहारी बाबा हैं, फल खाते हैं, हमेशा जप करते हैं, तो गांव के लोग उनको उतना महत्व नहीं देते हैं। या कभी कभी अयोध्या से या बनारस से बड़े बड़े जट्टा वाले आते हैं, खूब बड़ा बड़ा जट्टा, गांजा पीते हैं, गांजा पियेंगे तो ऐसे ऊपर चिलम के ऊपर लौ जल जाता है, तो लोग बोलते हैं हाँ देखो ये महात्मा है, आप लोग क्या हरे 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 कृष्ण करते रहते हो, ये लोग महात्मा है, देखो ठंडी में भी ऐसे नंगे घूम रहे हैं लोग, ये न भक्ति है, ऐसा लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि हाँ यही भक्ति है। देखो इनका कितना बड़ा जट्टा है, साधारण चीज है जट्टा बढ़ाना, आप लोग रोज से भिन्न करते हो। तो उनके कहना कि जिसका नख जटा बहुत बड़ा है वही सिद्ध है। कली युग में जो बड़ा बड़ा नख बढ़ाया है, दाढ़ी बढ़ाया है, खूब बड़ा शिखा, इतना बड़ा 10 किलो का वजन सिर पर जटा का, हम लोग देखे भी हैं, और जटा खोल देंगे तो जमीन को बहारते चलता है, जमीन को भी स्पर्श करके चलता है, तो लोग समझते कि हाँ ये कुछ महात्मा हैं, ये सिद्ध हैं। जाके नखियर जटा विशाला, जिसके नख जटा विशाल हैं कलि युग में उसको लोग बोले हाँ यही सिद्ध और तपस्वी है। ट्रेन में भी टीटी लोग यही देखते हैं कि हाँ इसका जटा कितना बड़ा है, तो मैंने पुराना भक्त है, दाढ़ी ओढ़ी नहीं रखा, बोला कि ये नया आदमी है। अभी ट्रेन में टीटी लोग भी जिसका बड़ा दाढ़ी जटा है तो बोले हाँ ये भक्त है, जिसका नहीं तो बोलेंगे अभी नया नया जुड़ा है लगता है। एक बार ट्रेन में राम, जो अयोध्या में राम मंदिर है ना, श्री रामचंद्र न्यास परिषद के जो महंत थे रामचंद्र परमहंस है, अब मर गए बेचारे, वही न्यास परिषद के अध्यक्ष थे, अभी नृत्य गोपाल जी हैं शायद, نشت گوپال جی ہیں نا ابھی, تو ٹرین میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ میں ان کے بہت سارے انوائی بھی تھے. تو رامانندی لوگ بڑا بڑا ٹیکا لگاتے ہیں, بہت موٹا موٹا ایسے ہوتا ہے اور جٹا بھی بڑا بڑا ہوتا ہے. تو ٹرین میں جا رہے تھے تو ٹیٹی ان کو ٹکٹ مانگ رہا تھا, تو ان کے ساتھ کافی مہاتما تھے تو کہ ٹکٹ, تو رام چندر پرمہنس بولے کہ کیا ٹکٹ مانگتے ہو, نہیں دیکھ رہے سب کا ٹیکا تلک, اس سے یمراج بھی ڈرتے ہیں, تم کو ڈر نہیں لگتا ہے, بار بار کیا ٹکٹ مانگتے ہو. یہ ٹیکا کو دیکھ کر یمراج بھی ڈر جاتے ہیں, اور بڑا بڑا ٹیکا ہوتا ہے ان لوگوں کا ایسے چوڑا چوڑا. ایودھیا سے ایک اور رمانی جی آتے تھے, منی پروت پر آتے تھے, تو ان کے ششیہ تھے رمانی جی کے رگھوناتھ جی, دکیا پربھو بھی جانتے ہیں, تمال جی بھی جانتے ہیں, تو مہاراج کے ساتھ کبھی کبھی آتے تھے. تو ایک بار دیوکیا پربھو کا بھی پروگرام تھا, مہاراج کا بھی پروگرام تھا, ادھر مہاراج کا پروگرام ہریداس پربھو رکھے تھے ادھر مولون یا پوئی میں, تو مہاراج کہے رمانی جی کو کہ چلیے پروگرام ہے مولون میں یا بھانڈوپ میں تھا, تو رمانی جی کہے کہ نہیں دیوکیا پربھو کا پروگرام ہے میں وہاں جاؤں گا. تو رمانی جی گئے دیوکیا پربھو کے پروگرام میں, تو پروگرام کے دوسرے دن مہاراج پوچھے کہ کو لیٹر ملل ہاں, تو ہم لیٹر نہیں جانتے تھے کہ کیا لیٹر کیا ہوتا ہے, تو رمانی جی کہ چھوڑی جانے دیں, وہ بولے چھوڑیے جانے دیں. تو مہاراج جی کہ ہمارا کہتے 21 لیٹر ملل ہے, میں نے ہم کو 21 لیٹر ملا, میں نے 2100 روپیہ ملا. اور دیوکیا پربھو کے پروگرام میں رمانی جی گئے تھے تو وہاں سے کچھ کم ملا تھا. تو رمانی جی کہے کہ تو مہاراج بار بار پوچھ رہے تھے تو لیٹر کے روپ میں, تو ہم نہیں سمجھ رہے تھے. تو بعد میں ہم رمانی جی سے کہے کہ مہاراج کیا پوچھ رہے تھے لیٹر کیا چیز, تو نہیں ہنس رہے تھے تو نہیں بتا رہے تھے. تو بعد میں بات کو مہاراج ہی کہنے لگے کہ رمانی جی کو میں کہا تھا کہ چلیے پروگرام چلنا ہے, تو سوچے کہ دیوکیا پربھو کا پروگرام ہے تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس ان کا پروگرام ہوتا ہے تو بہت بڑا پیسہ ملے گا, زیادہ دکشنا ملے گا. لیکن دکشنا وہاں کم ملا تھا تو اس لیے وہ تو یہاں پر پربھوپا جی جو ہے پستک وترن پر زور دے رہے ہیں, اب بھکتوں کو پستک وترن کرنے کا بھی بہت اچھا اچھا انوبھو ہوتا ہے, اس لیے جب بھکت لوگ جاتے ہیں بس میں یا ٹرین میں یا اسکول میں اب لوگ جاتے ہیں, اسکول کے مادھیم سے ادھک پستک وترن ہو رہا ہے, یا پارکنگ ایریا میں جیسے ایئرپورٹ میں جائیے, ریلوے اسٹیشن کے پارکنگ ایریا میں جائیے, یا لوکل ٹرین میں یا باہر کی ٹرینوں میں جائیے پستک وترن کرنے کے لیے تو پستک وترن ہوتا بھی ہے, یا بڑے بڑے ادیوگ پتیوں سے کل کارخانوں میں پستک وترن کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, جیسے ویلسپن میں 15,000-20,000 پستک وترن ہوتا ہے, کوئی کنوینس کر لیتا ہے کوئی بڑا ادیوگ پتی کو تو اس کارخانے میں جتنے بھی کرمچاری ہیں اس کے مادھیم سے ایزی پستک وترن ہوتا ہے. آپ لوگ کرتے ہیں نا, آپ جاتے ہیں, آپ کو بول رہا ہوں, آن لائن کرتے ہیں آپ یا آن لائن کر سکتے ہیں, انیک نسخے ہیں, یا پربھو جی کرتے ہیں, ان کا کوریئر کا بزنس ہے, تو کوریئر میں جو بھی کسٹمر آتے ہیں ان کو ایک گیتا دیتے ہیں نیو ایئر گفٹ, بولتے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو ہمارے طرف سے ایک گفٹ لے کر جائیے, تو اس तरीके से काफी पुस्तक वितरण करते हैं। न्यू ईयर में कोई ना कोई गिफ्ट लोग बनाते ही हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, तो उनको आप गीता दे सकते हैं, या दीपावली गिफ्ट के लिए, या बर्थडे गिफ्ट में गीता दे सकते हैं, या मैरिज सेरेमनी होता है, हर साल लोग विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं तो उसमें दे सकते हैं। कोई अपने विवाह के वर्षगांठ में बहुत महंगा महंगा गिफ्ट रखता है, कोई लोग गोल्डन वॉच देते हैं, कोई लोग बड़ा मोबाइल देते हैं, कोई लोग अच्छा स्पेशल घड़ी देते हैं, कोई लोग गोल्डन पेन देते हैं अपने शादी के सालगिरह पर, तो उनको कन्विंस कर सकते हैं कि गीता दीजिए। ये सब तरीके हैं पुस्तक वितरण करने के। तो प्रभुपाद जी के समय में भी ये सब तरीके थे, एयरपोर्ट में, मार्केट एरिया में, पार्किंग एरिया में और फुटपाथ पर ऐसे पुस्तक वितरण करते थे भक्त लोग। गांव गांव में, शहर शहर में, हर जगह पुस्तक वितरण कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अपने अपने संबंधियों को, जो आपके संबंधी हैं मुंबई में, उनको संपर्क कर सकते हैं, उनके माध्यम से, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं, पहचान वाले हैं, पुस्तक वितरण कर सकते हैं। प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलती है। प्रयास करना चाहिए पुस्तक वितरण के लिए। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि ये मेरा नम्र निवेदन है, कृपया पुस्तक वितरण कीजिए। जहां चाह वहां राह, अगर हम इच्छा करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ होगा, प्रयास करेंगे तो। प्रयास ही नहीं करेंगे तो कहां से होगा, प्रयास करना चाहिए। गिलहरी ने प्रयास किया या गौरैये ने प्रयास किया कि समुद्र को मैं सुखा दूंगी, तो उसको कोई सहयोगी मिल गया। प्रयास करेंगे तो कोई न कोई जरूर सहयोग करेगा। तो अंग्रेजी में लोग कहावत है कि गॉड हेल्प देम दोज हु हेल्प देम सेल्फ, ऐसे ही है ना, कैसे है बोलो है? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, आप सुने नहीं हो, अब IIT के स्टूडेंट वो भी पाटलिपुत्र के, गॉड हेल्प देम दोज हु हेल्प देम सेल्फ, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी खुद मदद करता है। हम पहले खुद आदमी प्रयास करता है ना, कोई संकट आता है तो आदमी प्रयास करता है उस संकट से उबरने के लिए, और खुद प्रयास ही नहीं करेगा तो कहाँ सहता है। आदमी प्रयास करता है, डूबने वाला आदमी क्या करता है, प्रयास करता है, हाथ पांव ये करता है, चिल्लाता है, तब लोग सहायता के लिए आते हैं। अब बिल्कुल डूबते जाएगा, कुछ नहीं करेगा तो क्या लोग दुनिया है। वो डूबने वाला हाथ ऐसे करता है, ऊपर नीचे करता है, कभी आवाज भी करता है, तो बोलते अरे डूब रहा है, डूब रहा है, यानी ऐसे पड़ा रहेगा, बोलेंगे नहीं वो तैर रहा है। जब ब्रजमंडल परिक्रमा में हम लोग जा रहे थे तो भय घाट है, तो वहां कुछ लोग तैर रहे थे, तो एक आदमी दूर तैर तैर करके वो ज्यादा प्रवाह में, तेज करंट में चला गया और अब वो डूब रहा था, लेकिन ऐसे करके ऐसे ऐसे हाथ कर रहा था, मैंने हेल्प मांग रहा था, लेकिन दूसरे लोग, हम लोग भी समझ गए वो ऐसे ही तैर रहा है, हरी बोल कर रहा था, वो थक गया था बिल्कुल। वो सोचा था कि अनाउंस हुआ था कि जो लोग तैर कर जाना चाहें जा सकते हैं, बीच में बहुत ज्यादा करंट था, तो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे। एक आदमी कहा कि वो शायद डूब रहा है या थक गया है, तो बाद में दो भक्त गए तो उसको ले आए। तो जो अपनी सहायता के लिए सहायता मांगेगा, प्रयास करेगा तभी ना, तो जो प्रयास करता है उसको इस भगवान सहायता करते हैं। प्रयास करना चाहिए पुस्तक वितरण के लिए। आप प्रयास करते हैं, कितने लोग प्रयास करते हैं?
प्रयास करते हैं।
आप प्रयास करते हैं, कितना पुस्तक वितरण किए हैं? काउंट नहीं किए, 1000-2000 हुआ का? नहीं हुआ। प्रयास करना चाहिए। ऐसे तो हम एक दिन भी पुस्तक वितरण करने नहीं जाते हैं, दे देते हैं। एक दिन भी हम खुद पुस्तक वितरण नहीं करते हैं, लेकिन देते हैं कि आप इतना करिए, आप इतना करिए, या पहुंचा देते हैं। पहुंचाने के लिए चले जाते हैं गाड़ी से। अधिकतर मैं कहता हूं, नहीं, आप आइए और लेकर जाइए। क्या मंदिर का ये होगा? आप आओ और लेकर जाओ, पुस्तक वितरण करो। करना नहीं तो कराना, आप खुद करिए, नहीं तो लोगों से कराइए। दोनों ये होता है, करना भी, नहीं तो लोगों को इंगेज करके करवाना। तो अधिकतर लोग इंगेज कराते हैं, कई लोगों को बोलते हैं आप पुस्तक लीजिए और वितरण कीजिए। तो करने वाला और कराने वाला दोनों को लाभ मिलता है, जैसे मेहंदी पीसने वाला और बांटने वाला, दोनों के हाथ में मेहंदी लग जाता है, दोनों को लाभ मिलता है। बांटने वाले को लगे जे मेहंदी का रंग, जो पीसता है उसके हाथ में भी रंग लग जाता है, अलग से लगाना नहीं पड़ता है। तो जो दूसरे से कराता है उसको भी लाभ मिल जाता है, और जो वितरण कर रहा है रोड पर या दुकान में, तो उसको तो लाभ मिलता ही है। तो दोनों लाभान्वित होते हैं। तो आप कर नहीं रहे हैं तो दूसरे से कराइए। आप कितना है? कौन वाला? तमाल जी बोल रहे हैं ना कि जो आना फ्री जाना फ्री, वो मैं भूल गया था। तो अयोध्या से वो महात्मा जी आते थे तो ट्रेन में टिकट नहीं लेते थे। वो ऐसे टीका बड़ा बड़ा होता था, जटा होता था, दाढ़ी होता था, टीटी जब कभी टिकट के लिए आता था तो बड़ा अच्छा वो गाना बनाए थे और गाना गाकर सुना देते थे टीटी को, आना फिरी जाना फिरी, आज जेल अंदर करोगे तो खाना फिरी, आज सुबह शाम माला फिरी। बोले कि जेल में करो या बाहर करो, क्या अंतर पड़ता है? अंदर करोगे तो भी खाना फिरी और वहां भी माला फिरी, वहां भी माला चप सकते, खाना तो जेल में मिलता ही है ना। तो वो कह के ऐसे भी हमको कहीं खाने के लिए जुगाड़ बैठाना पड़ता है, जेल में तो ऐसे ही खाना मिलेगा ही, और खाना खाना है और जॉब करना, और क्या काम है? बोले हमारा दो ही काम है, प्रसाद ले लेना और जॉब करना। तो जो बाहर कर रहे हो अंदर भी काम वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पुस्तक वितरण प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिए हैं पुस्तक वितरण पर, विशेष करके इस महीने में, दिसंबर के महीने में सबको पुस्तक वितरण में प्रभुपाद जी लगाते थे, और इस समय भी सब लोग पुस्तक वितरण में हैं। जैसे देखिए यहाँ जो पुजारी हैं वो भी सामने करते हैं, पुजारी लोग भी करते हैं ना दिन भर, ये बाहर भी जाते हैं। जो माता जी लोग माला बनाती हैं वो लोग भी करती हैं, जैसे सुरंगी माता जी आप देखेंगे मंगल आरती से ही उनका फूल माला चालू होता है सेवा करना। माता जी गुस्सा भी करती हैं, बड़ा प्रेम भी है उनका, हृदय बहुत दया भी है, करुणा भी है उनके हृदय में, करुणा भी है। और सेवा में देखिए तो दिन भर फूल माला बनाना, ये बड़ा सेवा है। मंगल आरती से ही माता जी माला बनाती हैं कि नहीं? इंगेजमेंट कितना है, कभी हम लोग विचार नहीं करते हैं कि जो माता जी लोग सुबह से 11 बजे तक फूल माला सेवा करती हैं, अपना जप छोड़ करके, बाद में इनको जप करना पड़ता होगा, दिन के दूसरे समय में जप करती हैं, और साथ में लोग पुस्तक वितरण भी करते हैं। मैं सुरंगी माता जी को देखा हूँ, स्कूल में उनके साथ में गया था دو سال پہلے تو اسکول میں جاتی ہیں, میونسپل اسکول میں پستک وترن کرتی ہیں. تو دسمبر مہینے میں یہ لوگ مندر کے سیوا کے ساتھ ساتھ میں پستک وترن میں بھی انگیج رہتی ہیں. تو مندر کا چاہے پجاری ہو چاہے بی بی ٹی والے ہوں چاہے ریسٹورینٹ چاہے مٹھائی کے جو انچارج ہیں چتربھوج پربھو, یہ بھی پستک وترن کرتے ہیں. تو یہ سب کو دسمبر کے مہینے میں وشیش روپ سے سب لوگ پستک وترن میں بھاگ لیتے ہیں جتنا ہو سکے. تو آپ لوگ پڑھے لکھے ہو زیادہ کر سکتے ہو, اب آئی آئی ٹی کیے ہو, آپ بھی انجینئرنگ کیے ہیں نا ابھی, ہاں کیا کیے ہیں, دکان ہے آپ کا, ہاں دکان نہیں ہے کہیں نہیں, دکان سب کو دکان ہے, دکان تو سب کو بھگوان دیے ہیں کوئی بنا دکان کا نہیں سب کو دکان ہے نا, یہ تو دکان ہے تو اس کو اپیوگ کرو. دکان مطلب دکان, دکان نہیں, ایک آدمی کہا کہ آپ کا دکان ہے, مطلب کہ نہیں میرا دکان نہیں ہے, کیا نہیں دکان ہے, دکان تو ہی ہے. تو آپ کتنا پستک اور لے سکتے ہیں, پچیس کہاں سے لیتے ہیں, میں نے کوئی ایسے کوئی خاص آدمی نہیں ہے نا کہ ان سے ہی لیتے ہیں. اچھا بی وائی سے, بی وائی سی یوتھ کیا بولتے ہیں, بھکتی ویدانت آپ کے ساتھ جڑے ہیں, نہیں اچھا ہے. آپ کتنا پستک لیے ہیں, کل آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کولکاتہ. تو یہاں آپ کتنا پستک وترن کر سکتے ہیں, آپ کے ہی پہچان ہوں گے نا سب. دو سو بک تو لے سکتے ہیں نا, دو سو کے لگ بھگ. کیا کرتے ہیں, انجینئرنگ کرتے ہیں, جاب کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں. تو پڑھائی کر رہے ہیں تو زیادہ نہیں کر سکتے ہیں آپ. تو آپ کتنا پستک لیے ہیں, دو باکس, تو دو باکس اور لیجئے, دو باکس اور. تو جو لوگ نہیں لیے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور پریاس کیجیے اور لیجیے, جس سے آپ جڑے ہیں اس سے لیجیے. جو لوگ نہیں جڑے ہیں یہاں بک اسٹال سے لے لیجیے یا یہاں پر بھی رہتا ہے, ضرور پستک لیجیے. پرپاد جی کا آدیش ہے آپ کچھ نہ کچھ ضرور پستک لیجیے اور وترن کیجیے. ماتا جی لوگ بھی کرتی ہیں, تو جو لوگ یہ ماتا جی آپ لوگ اگر نہیں لی ہوں گی تو آپ لوگ بھی پستک لے کر جائیے اور وترن کیجیے, گھر گھر میں جا کر کے کیجیے, دکان دکان میں کیجیے, مارکیٹ میں کیجیے, ضرور کیجیے کچھ. یہ پربھوپاد جی کا نویدن ہے, انوروھ ہے, پربھوپاد جی ہم سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, نویدن کر رہے ہیں کہ پستک وترن کیجیے. ٹھیک ہے, دھنیہ واد. ہرے کرشن. شیلا پربھوپاد کی بک ڈسٹریبیوشن میراتھن کی جین ٹائیگر پریمانند.